में बड़ी इमारत और बड़ा मजमा लगाने के क्या फायदे हैं और नुकसान आते हैं। देखिए इमारतों की तामीर से कोई कौम बड़ी नहीं होती न तरक्की करती है। इमारत कुछ नहीं देती, कौमें तरक्की करती हैं किरदार से। किस कौम में कितने किरदार पैदा किया है, सवाल ये है कि नहीं कि किसने कितनी इमारतें बनवाई हैं। माजी में हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी इमारतें बनवाई, उन्होंने कोई फ़ायदा हमें नहीं पहुँचाया। हम लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में कम से कम 500 बड़े इमामबाड़े हैं और दो चार इमामबाड़े तो ऐसे हैं कि जो सयाह देखने के लिए जाते हैं, जिस जो इतने बड़े बड़े हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और इतने आलीशान इमामबाड़े हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन वहाँ की पूरी कौम अगर आप जाके देखें तो जहालत में इंतहा ज़्यादा, पस्ती में डूबे हुए हैं, नावाकफियत, तहजीब, अमल, नमाज, रोज़ा, हर चीज़ में वो बहुत पीछे हैं। इमारतें ज़रूर हैं, जब उधर से गुजरते हैं तो चूमते हुए जाते हैं, जो उसको करीब नहीं होते वो दूर से ऐसे करते हैं, ऐसे करके चले गए। हर 10 कदम पे एक इमाम बड़ा है और वो भी बड़ा बड़ा। खुद मुसलमानों ने जब जवाल शुरू हुआ तो इमारतें बनवाना शुरू की। शाहजहाँ के दौर से जवाल शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा इमारतें शाहजहाँ ने बनवाई। जामे मस्जिद शाहजहाँ की बनवाई हुई है, ताजमहल शाहजहाँ का बनवाया हुआ है, आगरे का किला शाहजहाँ का बनवाया हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें उसने बनाई हैं। तो इमारतों से कौम नहीं बनती, कौम जो है वो किरदार साजी से बनती है, और किरदार जो है वो इल्म और अमल के ज़रिए ढलता है। उसके लिए खाली ज़मीन भी काफ़ी है, जैसे पैगंबर इस्लाम ने खाली घेर दिया और कहा यह मस्जिद है, और वहीं किरदार साजी का काम शुरू कर दिया जिसका छत भी नहीं थी, और एक खजूर काट के उसको मिंबर बना दिया गया था। फिर उसके कुछ दिन के बाद उसका जो साया किया गया वो खजूर की पत्तियों का, जिसे हमारे यहाँ छप्पर कहते हैं, और उस छप्पर में इस उम्मत की बुनियाद रख दी पैगंबर इस्लाम ने, और एक ऐसा समाज आलम वजूद में आ गया कि उससे पहले इंसान ने देखा नहीं था। खुद मौलाए मुत्तकियान जब कूफे में आए हैं और कूफे को अपना बनाया है, ये वही विलायत और इमामत का फैसला है कि अब तक मरकज जो था वो मदीना था। मौलाए मुत्तकियान ने फैसला किया कि हम कूफे में अपना मरकज बनाएंगे, यही सबसे बड़ी बात। मदीने में मस्जिद नबवी है, पैगंबर इस्लाम की कब्र थी, हज़रत अली का घर था, सभी कुछ था, हज़रत अली के बागात थे, लेकिन इसलिए आए कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए ज़्यादा थी कि दूसरे खलीफा सानी के ज़माने में यहाँ 4 फौजी छावनियाँ बनी थी, और वहाँ फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये फौजी जो हैं वो आम मुसलमानों से अलग एक चीज़ थे, और उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई थी, जंग हो ताकि हम माल गनीमत लाएं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएं। तनख्वाह उन्हें मिली रही थी, वो हर वक्त यही सोचते थे कि कहाँ हमला करें और कैसे माल हमें मिल जाए। ऐसे माहौल में हज़रत अली ने जाके इल्म का बीज बोया, और उस ज़माने के लोगों ने जो उसके बारे में तबसरा किया है कि हज़रत अली तो जहाँ खड़े होते हैं उनके अतराफ़ से इल्म के सोते फूटते हैं, उसका नतीजा यह है कि दोनों तरह के किरदार आज पूरे इराक़ में पैदा होते रहे हैं। आकाए सदर भी पैदा हुए, इल्मी किरदार सद्दाम जैसा पैदा हुआ, बदमाश किरदार, तो वहीं हबीब इब्ने मज़ाहिर भी पैदा हुए, वहीं शिमे पैदा हुआ, इब्ने ज़ियाद भी पैदा हुआ। इसका मतलब कि दोनों बीज अपना काम कर रहे थे। अगर हज़रत अली न जाते वहाँ तो इस खत्ते में साहिबान इल्म न पैदा होते। सबसे ज़्यादा साहिबान इल्म इसी खत्ते में पैदा हुए, और ये कारनामा है हज़रत अली का, और कोई दूसरा सबब नहीं है। सुन्नियों के उलमा भी यही पैदा हुए हैं, ये शाफ़ी वफ़ी सब यही पैदा हुए हैं इसी खत्ते में, मुहद्दिसीन जो पैदा हुए हैं यही, और बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले यही, राजी वगैरह का नाम सुना होगा, सब यही पैदा हुए हैं। इतना इल्मी काम हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं, मगर आज तक हम देख रहे हैं कि दुनिया परस्त भी यहाँ बहुत पैदा होते हैं, दुनिया के पीछे भागने वाले यहाँ पैदा होते हैं। तो किरदार साजी ही असल काम है, ममलिकत साजी नहीं। اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک انچ اسلامی سلطنت میں اضافہ نہیں کیا. حضرت علی آئے نہیں تھے, خود پیغمبر اسلام بھی نہیں آئے تھے اسلامی ریاست میں اضافہ کرنے کے لیے. ریاست کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسلام میں سلطنت کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے حدود جو ہیں وہ زمین پر نہیں, انسان کے دلوں میں قائم ہوتے ہیں, انسان کے خیالات میں قائم ہوتے ہیں. جو بھی مسلمان سچا مسلمان ہے وہ مملکت اسلامی کا ایک شہری ہے, حکومت الہیہ کا شہری ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو اور چاہے وہ ہندوستان میں ہو, وہ حکومت الہیہ کا شہری ہے. یعنی اپنے اوپر اس نے اللہ کے احکام کو نافذ کر لیا ہے, اور جو اپنے احکام کو نافذ کر لے گا وہ اگر ولی ہے کوئی, خواہ وہ ولی فقی صحیح ولی معصوم نہ صحیح, اس سے جڑے گا ضرور, چاہے جہاں رہے گا, چاہے جہاں بھی رہے گا, ہندوستان میں رہے گا, مگر وہ اسلام کا شہری ہے, وہ حکومت اسلامی کا شہری ہے. یہ ساری زمین اللہ کی ہے اور یہ ساری مملکت جو ہے وہ اللہ کی ہے, اور ہر جگہ اللہ کی حکومت قائم ہے. اللہ سزا بھی دیتا ہے ہر جگہ اور جزا بھی دیتا ہے, ایک مرد مومن اسے جانتا ہے. تو یہ تو ہو گیا, اس سے نقصانات تو ہیں, اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہی ہدف ہے ہمارا, بڑا مجمع کامیاب کرنا. مجلس کامیاب اسی وقت ہوگی کہ جب بہت مجمع ہو اور بڑا شور و غل ہو. ہمارے یہاں کامیاب محفل وہی کہی جاتی ہے, جشن ہوتا ہے کہ صبح جب ہو تو سب کے گلے بیٹھے ہوئے ہوں, ذاکر صاحب کا بھی گلا بیٹھا ہو اور سامعین کا بھی گلا بیٹھا ہو. ذاکر صاحب تقریر کر کے اپنا گلا بٹھا لیتے ہیں اور سامعین جو ہیں وہ نعرے لگا کے اپنا گلا بٹھا لیتے ہیں, اور اس کے بعد سب کہتے ہیں بہت کامیاب پروگرام رہا, واہ 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 واہ, بہت کامیاب پروگرام تھا, اور پروگرام کرنے والے خوش ہوتے ہیں. نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلتا, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے دن جا کے سب سوتے ہیں, دن بھر جو اسکول جانے والے لڑکے ہیں وہ بھی سوتے ہیں, اور ایک ہفتے تک ان کا ذہن جو ہے وہ معطل رہتا ہے, اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ شور مچانا جو ہے وہ اسلام میں کامیابی نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ تیز آواز جو ہے وہ خراب آواز ہے, اور سب سے خراب آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے, صوت الحمار کہا ہے قرآن نے, چلا کے مت بات کرو, چیختے ہیں گدھے. ہمارے یہاں پروگرام کی کامیابی جو ہے وہ چیخ ہے, کاش یہی کم ہو جائے. دوسری بار حضرت علی نے کہا کہ تمہارا کیا ہو گیا ہے نہج البلاغہ میں, ہر چیخنے والے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہو. اس کا مطلب چیخ ہمارے یہاں کوئی معیار نہیں ہے, شو کوئی معیار نہیں ہے, ہری پیلی جھنڈیاں لگا لینا یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار وہ نتیجہ ہے کہ انسانوں تک کوئی پیغام گیا یا نہیں گیا, کچھ پہنچا یا نہیں پہنچا.